प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं।
एक पन्ना एक कलम सा जीना, लिखा मिटा के फिर लिखना है, इतना उतना क्या कितना है, सच है या मृग तृष्णा है। 4 करोड़ से ज्यादा सपने और एक नींद का डब्बा, मेरे मन के मर्तबान में मेरी मर्जी का मुरब्बा, तेरे अंदर मेरा घर है या मुझ में तेरी बस्ती है, इतना सच बता दे जिंदगी तू, रिश्ते में मेरी क्या लगती है। दोस्तों, ये पंक्तियां हैं हाल ही में प्रदर्शित फिल्म नील बट्टा सन्नाटा के एक बेहद खूबसूरत गीत की, और इन्हीं पंक्तियों के लेखक से आज हम करेंगे बातचीत। कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने साथी सजीव सारथी के साथ, और आज हमारे साथ हैं कवि गीतकार मनोज यादव जी। मनोज भाई, स्वागत है आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर।
बहुत बहुत शुक्रिया सजीव जी।
तो सबसे पहले हम इस नील बट्टा सन्नाटा पे ही बात कर लेते हैं। बहुत ही दिलचस्प फिल्म है ये, अभी मैंने रिसेंटली देखी है, और इसमें आपके 2 गाने हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो इस फिल्म के अनुभव के बारे में कुछ बताइए कि ये गीत कैसे बने और ये फिल्म आपको कैसे मिली।
नील बट्टे सन्नाटा मुझे कैसे मिली, ऐसा हुआ कि इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं रोहन और विनायक, इन्होंने मेरा काम सुना हुआ था पीछे, जैसे कि कोक स्टूडियो, अगर आपको याद हो कोक स्टूडियो सुनकर ये हमेशा चाहते थे मेरे साथ काम करें, जुड़ें क्रिएटिवली। तो इन्हें ये फिल्म जब मिली, पहली फिल्म है इनकी, एक सुनहरा मौका था कि भाई फिल्म मिल रही है, हर बंदे के लिए खुशी की बात होती है फिल्में मिलना। तो इन्होंने मुझे कहीं से नंबर लेके कॉल किया ऐसे कि हम रोहन विनायक बोल रहे हैं। मैंने इनका नाम इसके पहले कभी सुना नहीं था, क्योंकि ये एड बहुत करते हैं, कमर्शियल्स बहुत करते हैं, लेकिन ऐसे मैंने फिल्मों में इनका इतना ज्यादा सुना नहीं था। फिर फिल्म का कॉन्सेप्ट बताया था कि एक ऐसे है, गरीब बच्ची है, वो मैथमेटिक्स में अच्छे से नहीं पढ़ती, ऐसे टूटे फूटे कुछ ब्रीफ थी, और फिल्म ऑलरेडी शूट हो चुकी थी तब तक। तो इन्होंने बोला एक फिल्म है, आप काम करना चाहते हैं। बंदे बड़े अच्छे लगे मुझे और मेरे गानों को पसंद करते थे, तो मुझे लगा कि जो मेरी राइटिंग पसंद करता है वो अगर मेरे राइटिंग पर अगर कभी गाना बनाएगा तो वो बिल्कुल प्यार से बनाएगा, है ना। तो वो एक मेरी राइटिंग से रिश्ता उनका जुड़ा हुआ था। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैं गया इनके स्टूडियो में, सायन में छोटा सा एक स्टूडियो था, कमरे में अपने कंप्यूटर पे इन्होंने पूरी फिल्म दिखाई। पूरी फिल्म जब मैंने देखी, आखिरी एक सीन पर मेरी आंख में आंसू आ गए थे, इमोशनल हो गया था मैं। फिल्म इतनी खूबसूरत बनी है, इतनी अच्छी फिल्म है। अगर आप देखें तो एक माँ और बेटी की कहानी है। माँ वो जो किसी के घर में काम करती है ना, नौकरानी की काम करती है, वो सपना देखती है कि कम से कम उसके बच्चे आगे बढ़ें, कुछ बने, कम से कम बाई ना बने। तो ये जो लाइन थी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, तो बाई की बेटी बाई बनेगी, इस लड़ाई से जो बाई जीतती है और जो बेटी को चाहती है बनाना, तो ये लाइन इतनी खूबसूरत थी। और इसकी जरूरत है आज सोसाइटी में, समाज में इन चीजों की जरूरत है ना। ऐसा माना जाता है कि फिल्मों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, तो क्यों ना ऐसी भी चीजें दी जाएं जो दिल को छुएं, कुछ बदलाव लाएं। और जिंदगी जितनी कठिन हमें लगती है उतनी कठिन है नहीं, चश्मा अगर आसानी वाला पहन ले तो सब आसान नजर आता है। तो बस यही रहा, फिल्म की लाइन बड़ी अच्छी लगी, हमारी डायरेक्टर बहुत अच्छी थी, नीतीश जी की स्क्रिप्ट अच्छी थी, स्टोरी अच्छी थी, मतलब सब कुछ इतना अच्छा था। ये जब मैं वो फिल्म देखा उसके बाद पता चला, और मैंने बोला कि मैं बेवकूफी होऊंगा अगर ये फिल्म मैंने नहीं की तो। और अपने आप आपका एक इंटरेस्ट उसमें आ जाता है कि नहीं, आप जुड़ जाते हो। पहली बार मैंने इसका रफ कट देखा था, मैं फिल्म के साथ जुड़ गया था और मुझे लग रहा था कि ये मेरी फिल्म है कहीं ना कहीं। मैं आज रियली आज जो फिल्म का रिस्पांस है और जिस तरह से लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैं भी अपना एक सौभाग्य ही मान लीजिए समझता हूँ कि चलो अपनी कला के द्वारा ही अगर 4 लोगों के जहन में जाकर कुछ परिवर्तन आए, कुछ अच्छी चीजें हो जाए तो खुशी होगी। बस इसीलिए नील बट्टे सन्नाटा कर ली।
जी मनोज भाई, एकदम सही बात आपने कही। वैसे इन दिनों आपका एक गीत और बहुत लोकप्रिय हो रहा है, वो है इतनी सी बात है, जिसमें आप पहली बार संगीत लेजेंड प्रीतम के साथ आपने काम किया है। तो ये बताइए कि ये आपका अनुभव कैसा रहा प्रीतम जी के साथ, और इस गीत की मेकिंग के बारे में कुछ बताइए।
इतनी सी बात है जो प्रीतम सर के साथ ये गाना करने का मौका मिला, ये मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रीतम जी इतने वर्सेटाइल हैं, उनके पास इतना रेंज है, आप डांस नंबर ले लो, सूफी सॉन्ग्स ले लो, पार्टी सॉन्ग्स ले लो, या जो भी आप गाने ले लो, मतलब ही इज मास्टर, है ना। तो जब आप ऐसे इंसान के यहाँ से जब आपको कॉल आता है, हम साथ में कुछ करना चाहते हैं, तो वो एक्साइटमेंट ही आपकी, मतलब जो सपने होते हैं उनमें से एक सपना है जो पूरा होने जा रहा है। आप जाते हो, नर्वस रहते हो, एक्साइटेड रहते हो। मेरी भी वही हालत थी, बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था। और जब मैं पहुंचा वहां पर तो प्रीतम जी ने पहली बात जो मुझसे बोली कि आई लव पाकिजा। अब ये पाकिजा गाना मैंने उंगली फिल्म में लिखी थी, तो एक बात से जो हम लोग का एक आइस ब्रेक होना चाहिए था वो तो इस गाने से हो गया था। उन्होंने मेरा काम सुना हुआ था, उन्हें बहुत पसंद भी था, तो मुझे उस बात की खुशी थी। मैंने बोला ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने एक मेलोडी रिकॉर्ड कराई फोन पर। पहला ड्राफ्ट जब मैंने भेजा तो उसमें जो मेन उनको जो सबसे अच्छी बात लगी वो, चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है। तो ये लाइन सभी को बहुत प्यारी लगी, बहुत पसंद आई। तो जब आपकी चार लाइनें पसंद आ जाती हैं तो उसके आसपास आपको लिखना होता है। सिंस ये अजहर फिल्म थी जिसमें अजहरुद्दीन पे जो ये बायोपिक है वो उनके लिए बन रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़े कुछ उर्दू के शब्द भी इसमें इस्तेमाल किए होंगे। आपने पहले देखो कि तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए। कुल मिला जुला के प्रीतम सर के साथ काम करने का ये समझिए कि प्रीतम सर इतना कंफर्टेबल आपको बना देते हैं, इतना फ्रीडम देते हैं, इतनी आजादी देते हैं कि आप उस फ्रीडम इतना कॉन्फिडेंस आप में वो रखते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस और फ्रीडम, ये जब सब चीजें आपके आसपास रहती हैं तो आप परफॉर्म कर जाते हो उसमें, है ना। और बहुत ही शानदार और खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा प्रीतम जी के साथ इस गाने पर एसोसिएट होकर। और अच्छा लगता है जब आपका पहला काम किसी के साथ आता है और वो गाना जब अप्रिशिएट होता है तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे होते हो। आई एम वेरी हैप्पी जैसे आप लोगों को गाना पसंद आ रहा है, आप उस गाने की तारीफ कर रहे हैं, तो जिंदगी का एक खूबसूरत लम्हा है प्रीतम सर के साथ काम करने का।
तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है। चलो जी यार साफ सा कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है।
मनोज भाई, हमने सुना है कि स्कूल के दिनों से ही आपने कविता लिखनी शुरू कर दी थी, और गुलजार साहब का लिखा चड्डी पहन के फूल खिला है वो पहला गीत था जो आपकी प्रेरणा स्रोत बना, क्या ये सच है? थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
स्कूल में देखिए, आप होते हो तो दिमाग बहुत जगह दौड़ता है ना, आप खेलते भी हो, आप मस्ती भी करते हो, बहुत वो इतना हाइपर होता है बचपना हमारा। लेकिन उसमें कुछ चीजें होती है जो आपको एक सेटल करती है। जैसे कि मुझे याद है गाने जब भी बजते थे, देवानंद साहब की फिल्म में मेरी फेवरेट एक्टर थे मैं, जब उनके गाने बजते थे तो गाने समझ नहीं आते थे ना कि कैसे होते हैं, बस हम एंजॉय करते थे उसके पीछे कैसे गाने बनते हैं, क्या चीजें होती हैं, इसमें एक पोइट्री होती है, इसमें धुन होती है, म्यूजिक होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, गायक होता है, ये सब इतना सोच नहीं पाते थे। बट गाना मजा आता था, गाना गा लेते थे। लेकिन जैसे ये जो गाना है, चड्डी पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, एक अलग किस्म की पोइट्री दिमाग में बज गई ना। देखो आप कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, ये जो लाइन है ये दिमाग में ऐसे घुसी कि अब जितने फूल हम देखें उसके बाद पता नहीं कौन सी फूल कौन से कलर का चड्डी पहन के, ये हर फूल को देख के वो गाना याद आ जाता था। चड्डी ढूंढने लगते थे, भाई चड्डी कहाँ है इस फूल की, तो अपने तरीके से लगाते थे कि चलो ये जो पंखुड़ी के पीछे जो हिस्सा है जिसपे पंखुड़ियां जुड़ी हैं वही चड्डी हो। तो ये ऑब्जर्वेशन का एक एक कमाल, एक रोशनी की तरह, मतलब एक फ्लैश हो गया कि देखो ऐसे भी सोचते हैं लोग। उसके बाद दिल लगने लगा, चीजों को जोड़ने घटाने लगे हम भी। किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, कलम को टोपी पहना दिया, कागज पे दौड़ा दिया, कुछ भी ऐसे अतरंग विचित्र चीजें सोचा करते थे। तब तक हमें ये पता नहीं था कि इसको कविता कहते हैं, क्या कहते हैं। लोग बोलने लगे, अरे तू अच्छी पोइट्री करता है। तो एक शौक जो है वो पैदा हुआ एक प्यारी सी पंक्ति सुनकर। म्यूजिक में, गाने में शुरू से बहुत ही इंटरेस्ट रहा है, अच्छा लगता था सुनना, देखना, फिल्में देखना। तो हाँ, कविताएं करने लगे, कब करने लगे, कैसे करने लगे ये पता नहीं, लोगों ने बताना शुरू कर दिया, अरे ये तो अच्छी लाइन है यार, ये कैसे, अरे। और आज आपके सामने हैं कुछ पंक्तियां, कुछ कविताएं लेकर, कुछ गीत और गाने लेकर। अब यही उम्मीद करते हैं कि भाई पसंद आए लोगों को, और हम कोशिश करेंगे ईमानदारी से अपना सोच और समझ से लिख पाए, ईमानदारी से उसको लिखें और निस्वार्थ भाव से लिखें, कोशिश करें कि लोगों को पसंद आए।
अच्छा भाई, आपने बताया कि पहली फिल्म जो है उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है किसी भी कलाकार की लाइफ में, ऑब्वियसली आपके साथ भी रहा होगा। तो वो पहली फिल्म कौन सी थी जो आपको मिली, और जब उस फिल्म में आपने काम किया तो आपको कैसा मतलब महसूस हुआ कि जो सपना आप देख रहे थे बचपन से कि वो आज साकार हो रहा है, तो वो फीलिंग थोड़ा सा बताइए कि कितना खट्टा मीठा अनुभव रहा वो।
पहली फिल्म छोटी सी फिल्म थी मस्ती एक्सप्रेस, जिसमें राजपाल यादव, जॉनी लीवर थे, जिसके डायरेक्टर थे विक्रम प्रधान और म्यूजिक डायरेक्टर थे चिनार और महेश, जो आज मराठी में बहुत काम करते हैं। हाँ, ये हमारी पहली फिल्म थी जिसमें हमें बुलाया गया था लिखने के लिए। कुछ 5-6 गाने हमने इसमें लिखे थे, शायद आप लोगों ने सुना भी ना हो इस फिल्म के बारे में, लेकिन हाँ इसमें गाने हमने लिखे थे, जिसमें एक गाना शंकर महादेवन जी ने गाया था। वही हमारी पहली मुलाकात शंकर महादेवन जी से हुई थी, उन्हें गाना बड़ा पसंद आया। देखिए, पहली फिल्म की एक्साइटमेंट जैसे भी रही हो, लेकिन आपका एक काम से दूसरा काम, दूसरे काम से तीसरा काम, जैसे वो सीढ़ी बनती है, एक मोटिवेशनल सॉन्ग था। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप हमारे लिए एक ठुमरी लिखो, सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ। खुशी तो हर फिल्म में काम करने की होती है, उतनी ही होती है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे आप फिल्म में काम करो, नॉन फिल्म में काम करो, अपने लिए लिखो या किसी के लिए भी लिखो, अगर आपको आनंद आ रहा है, आपको उस चीज की खुशी हो रही है, आप उस चीज को एंजॉय करते हो, अच्छी बात है। मैं यही सोचता हूँ हमेशा कि जो भी काम मेरे पास है उस वक्त, उस समय, बस भगवान की एक कृपा हो जाए कि कुछ अच्छा मेरे दिमाग में वो अपने माध्यम से भरे, और इसी जद्दोजहद में मतलब रहता हूँ कि अच्छा कुछ लिख पाऊँ, अच्छा सुना पाऊँ।
दोस्तों, आप हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया पर, कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में। आज के हमारे खासम खास मेहमान हैं कवि और गीतकार मनोज यादव जी। मनोज भाई, एक फिल्म अभी रिसेंटली आई है सनम रे, जिसमें आपने गाना लिखा है, और उसमें बहुत खूबसूरत पंक्ति है कि ये जान लेकर के जा मेरी, तुझे जीने में आया हूँ। अब इतनी रोमांटिक कविता अगर कोई गीतकार लिखता है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ प्रेरणा भी रही होगी, तो आपकी प्रेरणा वो कौन है, थोड़ा सा हमें अगर बता पाए तो प्लीज बताइए।
हाँ, ये जो गीत है, ये हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ, ये जान लेकर के जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। जी बिल्कुल, एक रोमांटिक गाना है, अमाल मलिक के साथ मेरा पहला ये एक लिखा हुआ गीत है उनके लिए। इसमें भी ब्रीफ देखिए सिंपल था कि बंदा है जो बेइंतहा प्यार करता है, लड़की हाँ बोले या ना बोले इसके परे जाकर वो प्यार करता है, तुम्हें प्यार करना है, बस करना है। इस बेइंतहा मोहब्बत को बांधने के लिए मुझे जो शब्द समझ में आए कि मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ, एंड मुझे खुशी है इस बात की कि ये लाइन सबको पसंद आई, लोगों ने इसको स्वीकार किया और इसको गाने में ढाला गया, और जिस तरह से ये गाना बनाया है अमाल मलिक ने, बेहद खूबसूरत है। अरमान ने इतनी खूबसूरती से गाया है, पलक मुच्छल ने भी बहुत, उसमें एक फीमेल पार्ट आता है जो खूबसूरती से ये गाया है। सो देखिए क्या होता है कि आप कोई भी गीत लिखते हो, आपको पता नहीं होता, एक एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हो जब आप कोई भी आर्ट परफॉर्म करते हो उस समय। और मेरा ये मानना है कि प्यार मोहब्बत इश्क का कोई चेहरा नहीं होता है ना, वो आपके अंदर होता है। जैसे मुझे लिखने से बड़ा इश्क है, किसी को गाने से होगा, किसी को खेलने से होगा। तो इश्क जो है आपका तब खूबसूरत होता है, आप जिससे करते हो वो भी आपसे उतना इश्क करे, तो तालमेल है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो मेरे केस में ऐसा रहा है कि मैंने लिखने की कोशिश की है, शब्दों ने मेहरबानी की है, भगवान की कृपा बरसी है और कागज कलम पर जो भी शब्द उतरे हैं, जिस भी स्तर पर है, लोगों को भाए हैं, लोगों को छुए हैं, लोगों को पसंद आए हैं। मैं इसका पूरा श्रेय जो है वो सिर्फ भगवान को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने चुना होगा शायद कि ये चार पंक्तियां मनोज के थ्रू कागज पर उतरें और लोगों तक पहुंचे।
जो ऐसे मुस्कुराया हूँ तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जा ले करके जा मेरी तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ।
भाई आपने शंकर एहसान लॉय जैसे संगीतकार के साथ शुरुआत की और प्रीतम के साथ भी आप जुगलबंदी बिठा चुके हैं, तो उन 4 करोड़ सपनों में अब अगला सपना किस संगीतकार के साथ काम करने का है, प्लीज बताएं।
सपने तो देखने चाहिए, बहुत जरूरी हैं। जो सपने देखते हैं वही जीते हैं। जीने की इच्छा है, भरपूर जीना चाहता हूँ, भरपूर सपने देखना चाहता हूँ। बस यही है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर उन लोगों तक पहुँच पाऊँ अपने राइटिंग के माध्यम से, अपने पंक्तियों के माध्यम से। और रही बात अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से पूछ रहे हैं तो AR रहमान साहब के साथ काम करने की दिली तमन्ना है। उसके बाद विशाल भारद्वाज जी हैं, एक ऐड किया है मैंने उनके साथ, फिल्म करने की बड़ी इच्छा है। और भी मुझे लगता है कि ये तो 2 बड़े नाम हैं जिनके साथ आप रिलेट करते हो, आप सपना देखते हो कि आप इनके साथ करो, और मैं जानता हूँ कि करोड़ लोग ये सपने देख रहे होंगे। बस ये चाहता हूँ कि मेरा सपना इस तरह से भी ले लिया जाए, अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से भी ले सकते हैं कि अच्छा लिखूं, जितना भी लिखूं लोग पसंद करें, है ना। अगर कुछ बुरा लगे तो लोग मुझे सुधारें, मैं सुधरूंगा। कुछ गलत लिख दिया सही करूंगा। बस यही है कि लोगों से जुड़ा रहूं, लोगों से एक रिश्ता जो कागज कलम के माध्यम से जो मैं बनाने चल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि ये कुछ शब्द, ये कागज कलम लोगों को समर्पित कर पाऊं और लोग इसे स्वीकार कर पाएं।
अच्छा मनोज भाई, अब तक आप काफी सारे गीत लिख चुके हैं, कोई ऐसा गीत जो कामयाबी या नाकामयाबी के पैमाने पर नहीं पर आपके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत खास रहा हो उसके बारे में हमें बताइए, वो गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे और इसी गीत के साथ अपने श्रोताओं से विदा भी लेंगे।
ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप अपने आप को पूरा एक मानते हो, तो मेरे सारे काम को मैं एक मानता हूँ और सभी मुझे पसंद है। लेकिन एक फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, नागेश कुकनूर ने डायरेक्शन दी थी उस फिल्म को, नाम है उसका लक्ष्मी, उसमें मेरे कुछ गाने थे। अब उसमें से एक चुनना बड़ा वो है, लेकिन जिस फिल्म पर, जिस सब्जेक्ट पर और जितनी खूबसूरत फिल्म थी, तो फ्रीडम इज यहाँ भी बहुत मिली थी और मुझे बेहद पसंद है उसमें। चाहे आप सुन सुगना ले लो, एक गाना है, दूसरा सुन रही बावली है, एक कैलाश भाई ने गाया हुआ है। इतनी प्रमोट नहीं हो पाई थी ये फिल्म उस वक्त, तो शायद लोगों ने सुना नहीं होगा इसे, बट अभी लोग इसमें से कोई भी मेरा गीत सुने और अगर वो खुद डिसाइड करें कि सही लिखा था कि नहीं, अगर ये फिल्म देखें, फिल्म के साथ उन गानों को अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत फिल्म है और एक मैसेज सोसाइटी में देती है। तो आई थिंक लक्ष्मी फिल्म के जो गाने हैं, राइटिंग वाइज मैं चाहता हूं कि ये आपके श्रोता सुने।
मनोज भाई, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपसे बात करके हमें बहुत 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 अच्छा लगा। हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं उनको भी यकीनन ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपका टाइटल मुझे बड़ा पसंद आया था कि एक मुलाकात जरूरी है। इस दुनिया में अनजान एक दूसरे से एक जिंदगी जी रहे होते हैं कहीं ना कहीं, बस ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, है ना, रूबरू होने का अवसर मिलता है। तो मैं आपके श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे गीत सुनते हैं, पसंद करते हैं, अगर ना पसंद आए तो अगर टोके तो हम और इम्प्रूव करने की कोशिश भी करें। इस प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छा लिख पाऊँ और लोगों के दिलों को छू पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
ही मांग ले दुआ, कोई तेरा ना होना। सुन री बावली तू अपने लिए खुद ही मांग ले दुआ, कोई तेरा ना होना। बिजार सा नजर आए जो तेरे सामने तेरा मसीहा, वो तेरा ना होना। तन का कमरा मन की कोठी, सांसों का खेल खिलौना, केश में सूरज घोंस के चलना, कभी कोई रात मिले ना। बावली तू अपने लिए खुद ही मांग ले दुआ, कोई तेरा ना होना।